और तकलीफ उठाते हैं तो उनको क्या मिलता है? तकलीफ ही मिलती है। तेसा मसु क्लेश ले विशेषे, उनको केवल क्लेश ही प्राप्त होता है, शेष बचता है, बाकी सब चला जाता है। मिलता क्या है उनको? खाली क्लेश मिलता है। नाने तथा स्थूल तुषा मुखा दी नाम, और कुछ नहीं मिलता उनको, क्लेश के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जैसे स्थूल तुषा मुखा दी नाम मतलब थोथा धान कूटो आप तो क्या मिलेगा आपको? क्लेश ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा। कुछ उसमें दाना थोड़ी है, उसमें दाना तो है ही नहीं, और कूटते रहो, और कूटते रहने से पता नहीं चलता है कि वो जो ना आप कूट रहे हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिलने वाला है, कूटते रहो कूटते रहो, क्या मिलेगा? कष्ट, कष्ट मिलेगा। और करते रहो करते रहो, उसमें धान है ही नहीं, थोथा धान, थोथा क्या बोलते हैं? भूसी बोलते हैं, धान की भूसी। कूटते रहो कूटते रहो, उसमें चावल है नहीं, बीज है ही नहीं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्लेश जो यहाँ पर है भागवत में उसी को समझाया गया है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है। समझ रहे क्या? जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा, ये शुद्ध ज्ञान है। जो केवल ज्ञान है, केवल बोध है, तो उसमें वो क्या सोचते हैं कि हम सब एक हैं, एक ही आत्मा है, हम सब अलग अलग आत्माएं नहीं है। तो ये केवल ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये शुद्ध ज्ञान क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं, जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपने मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ये चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती, आनंद नहीं मिल सकता है। आगे ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। हाँ, ये जो है ना, जो बात जो है ना दिमाग में घुस जाती है ना, तो जल्दी से निकलती नहीं है, है ना? इसलिए कहा है चैतन्य महाप्रभु ने, मायावादी भास सुन ले हुए सर्वनाश, सर्वनाश। जो मायावादी भास है सुनता है तो सर्वनाश हो जाता है। तो दिमाग में जो है ना एक विचार जो बैठ जाता है तो वो आसानी से निकलता नहीं, लेकिन काफी समय लगता है दिमाग से निकलने में। तो आगे प्रबल कहते हैं, अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंततः स्वतंत्र है और उसे ये चित्र है समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसकी आध्यात्मिक आनंदमय आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए किस विधि को ना अपनाए। देहधारी, हम शाश्वत रूप से देहधारी हैं। प्रत्येक जीव का अपना आध्यात्मिक देह है, आध्यात्मिक शरीर है हर व्यक्ति का। वो आध्यात्मिक शरीर आप नहीं जानते हैं कि आपका क्या है, लेकिन वास्तव में आपको उसे जानना है। भगवान की लीला में प्रत्येक जीव का अपना एक शरीर है जिसे स्वरूप कहते हैं, और वो सच्चित आनंद विग्रह है, वो है सच्चित आनंद है वो शरीर, और वो भगवान की सेवा के लिए होता है ना। तो वो आपको जानना है। तो प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं कि जो अव्यक्त की प्राप्ति है ये अपनी आत्मा की प्रकृति नहीं है वास्तव में, इस विधि को नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। 24 घंटे कृष्ण की सेवा। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अगर भक्ति की उपेक्षा की आपने, है ना, तो फिर आगे चलकर जो है नास्तिक होने का संकट रहता है। हाँ, नास्तिक मतलब ना अस्ति, नास्तिक का मतलब ना अस्ति मतलब नहीं है भगवान। जो निराकारवादी हैं वो एक प्रकार से नास्तिक बन जाते हैं। वो कहते हैं निराकार निराकार है ना, कि उनका आकार नहीं है, आकार नहीं है। और फिर आगे चल करके उनके दिमाग में निराकार भी खत्म हो जाता है, निराकार फिर हो जाता है शून्य, शून्यवादी। अब शून्य का मतलब क्या है? नास्तिक। भगवान को निराकार बोलते बोलते फिर वो क्या बोल देते हैं? निराकार है, इसका मतलब नहीं है, नास्ति नहीं है, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, निराकारवादी, एक प्रकार से फिर नास्तिक ही होते हैं, है ना। वो भगवान के रूप से फिर द्वेष करने लगते हैं, भगवान के गुणों से, भगवान की लीलाओं से भी द्वेष करने लगते हैं। तो संकट, नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया है ना। तो मंदिर में जो है, जो भगवान की पूजा है और भगवान का गुणगान है, इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, है ना। तो ये जो है ना, आज के श्लोक में प्रॉपर समझा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। आगे चल करके फिर भगवान कहेंगे, आगे चल करके भगवान कहेंगे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, जो मेरे परायण है सब कर्मों को मुझे अर्पित करने हैं। अनन्य नैव योगिन माम ध्यान उपासते, अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। तेषाम अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर, उनका मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं भवामि न चिरात्मा, देर नहीं करता हूं, जल्दी ही उसका उद्धार करता हूं, है ना। तो कितनी आसानी है, जब भगवान इस समुद्र मृत्यु संसार समुद्र से आपका उद्धार करते हैं तो कहां कठिनाई है। लेकिन अगर आप जो है अपने आप इस समुद्र को, मृत्यु संसार समुद्र को अगर पार करना चाहते हो तो कितनी कठिनाई होती है। तो बिल्कुल सरल है, इस संसार समुद्र को पार करना बिल्कुल सरल है, क्योंकि संसार समुद्र ये क्या बन जाता है, जो कृष्ण के चरणों की शरण लेता है तो संसार समुद्र क्या बन जाता है, हाँ हाँ, बत्त पद है ना, समासताय पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यसो मुरारे भवाम उधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विप्रदाम न तेषाम, है ना। तो जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है उनके लिए ये भव सागर, मृत्यु सागर जो है, ये क्या हो जाता है, बछड़े के खोर के बने छोटे से गड्ढे के समान हो जाता है। बछड़ा जब अपना पैर रखता है तो छोटा सा गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे में जो है ना, जो पानी होता है उसमें कहां आपको संकट है, उसको पार करने में आपको क्या दिक्कत है कि नहीं, कुछ कोई कष्ट ही नहीं है ना। तो वो समुद्र जो है जिसकी ना तो गहराई का पता है और ना लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, वो समुद्र जो है ना क्या बन जाता है, बछड़े के खुर का बना हुआ गड्ढा, कितना छोटा तो कितना सरल है ना। तो ये संसार समुद्र सूख जाता है ना, उनके चरणों की शरण लेने से तो कठिनाई दूर हो जाती है। तो जो निराकारवादी है अपने प्रयास से मृत्यु संसार सागर को पार करता है और बहुत कष्ट तकलीफ उठाता है, बहुत तकलीफ उठाता है ना। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा कर शशि, है ना, अत्यत्वम अहंकार न सो शशि विरंग शशि, अहंकार मेरी कृपा से मुझ में चित्त लगा करके मेरी प्रसन्नता से तुम सब कठिनाइयों से पार हो जाओगे, सब कठिनाइयों से पार कर हो जाओगे। अगर अहंकार के कारण नहीं सुनोगे मेरी बात तो नष्ट हो जाओगे, है ना। तो फिर अगर गोते रे खाना है इस संसार सागर में तो तो आपकी मर्जी, गोते खाओ। लेकिन अगर भगवान की शरण ले लो तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? अहंकार है। वास्तव में जितने भी क्लेश हैं उनका कारण क्या है? अहंकार है। अहंकार के कारण हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारा सम्मान घट जाएगा, है ना। इसलिए जो मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, है? और भक्तों को क्या कहते हैं? ये भगोड़े हैं, ये भगोड़ापन है, है? तुम संसार से डर करके और मंदिर में भगवान का भजन करते हो, ये तो भगोड़ापन है, है? और हम साहसी हैं, हम वीर हैं, हम कठिनाइयों का सामना करेंगे। तो ये क्या है? मूर्खता है। आप कितने भी वीर हो, कितने भी साहसी हो, समुद्र को पार कर सकते हो? नहीं। समुद्र को पार करने के लिए आपको जहाज चाहिए, मजबूत जहाज चाहिए, है ना। तो ये मूर्खता है जो कि इस तरह से अहंकार, इसको अहंकार भगवान कहते हैं, अहंकार। तो अहंकार के कारण नहीं श्रवण करते हैं। अच्छे तुम अहंकार न सो सचिव शशि, नहीं श्रवण करते। कृष्ण कथा को श्रवण करने में भी आपको अहंकार छोड़ना पड़ता है, आपको स्वीकार करना पड़ता है कि आप मूर्ख हैं, तभी तो आप बैठे हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं मैं इतना जानता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पुराना भक्त हूं, मैं यहां क्यों बैठा हूं कथा सुनने के लिए, तो आप नहीं सुनते। तो भगवान के अहंकारान न स्रोतसि, अहंकार कारण नहीं श्रवण करोगे तो क्या हो जाओगे? विनश्यसि, विनश्यसि, नष्ट हो जाओगे। तो इसलिए नष्ट होते हैं लोग, भक्तों का संग नहीं करते, है ना, भगवान की शरण नहीं लेते, है ना। तो जो भक्त हैं वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरा कष्ट दूर करो, द्रौपदी ने प्रार्थना की भगवान से मेरा कष्ट दूर करो, तो कृष्ण ने द्रौपदी का क्लेश मिटाया, है ना। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय, जो प्रणत है, है जो भगवान को नमस्कार करता है, शरणागत है, उसका क्लेश नष्ट कर देते हैं भगवान। तो बस प्रणत पाल, भगवान को कहते हैं प्रणत पाल, जो प्रणत है उनके शरणागत है, उनका पालन करते हैं भगवान, तो फिर कहां कष्ट है? एक कुत्ता है अपने मालिक के साथ रहता है, है ना। जो मालिक खाता है वो कुत्ते को ही मिलता है, और कितना सुखी रहता है, और अच्छा हट्टा कट्टा रहता है, और मजे से अपना खाता है, सोता है, सुरक्षा प्राप्त करता है। और दूसरा कुत्ता है सड़क में घूमता है, है ना, कूड़ा करकट में जो है भोजन ढूंढता रहता है, है ना, और दुबला पतला है, है? और फिर कोई उसको डंडा मार देता है, कोई पत्थर मार देता है, तकलीफ आता है, है कि नहीं? तो इस तरह से अगर हम भगवान की शरण लेते हैं और भगवान का अगर श्रवण कीर्तन करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। इसी नवे देव भगवान ने कहा है सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुसुखम कर तुम, करने में बहुत सुख कारक है। यहां पर भगवान ने कहा दुख, अब देखते हैं कहते हैं दुखम, यहां दुख कहा है भगवान ने, और उसमें कहा सुसुखम कर तुम, सुसुखम बहुत सुख पूर्वक, करने में बहुत सुख पूर्वक है। और यहां पर छठवें श्लोक में, सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उनका उद्धार करने वाला मैं होता हूं, मैं उद्धार करता हूं मृत्यु संसार सागर से, है कि नहीं। ध्रुव महाराज को जो है भगवान ने विमान भेजा, अपने सेवकों को भेजा विमान के साथ कि ध्रुव महाराज को इस विमान में आदर पूर्वक लेके आऊ। ध्रुव महाराज बैठ गए विमान में, बैठ गए, है ना। ये भगवान की कृपा है, भक्त के लिए जो है ना भगवान अपना विमान भेज देते हैं। विमान में बैठ कर भक्त जो है उनके धाम में जाते हैं, है ना। गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा तो वो बहुत कष्ट में था, है? तो भगवान ने गजेंद्र का कष्ट देखा तो जल्दी से गरुड़ पर बैठ करके आए और गरुड़ से उतर करके भगवान जो है जमीन में आए और फिर हाथी और मगरमच्छ दोनों को पकड़ करके बाहर निकाला। सबसे पहला तो कष्ट यही था कि हाथी डूब रहा था पानी में, तो पहले तो दोनों को पकड़ के बाहर निकाला। उसके बाद फिर देखा कि मगरमच्छ नहीं छोड़ रहा है, तो उन्होंने फिर न्याय किया, जैसे न्यायाधीश न्याय करता है, है ना, तो किसी को फांसी की सजा देता है। तो मगरमच्छ का फिर गला काटा कि ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये अभी भी नहीं छोड़ रहा है, पानी के बाहर भी निकाल दी तो भी नहीं छोड़ रहा है, ये आतंकवादी है, तो फांसी की सजा दी अपने चक्र से उसका गला काटा। इस तरह से वो भी जो हुहू नाम का गंधर्व था, तो वो देवल मुनि के साप से मुक्त हो गया, वो गंधर्व लोक में चला गया। और हाथी को क्या दे दिया, अपना स्वरूप दे दिया, तो बड़ी आसानी से उसने शरीर छोड़ दिया, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई क्लेश नहीं हुआ, और उसको भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ, भगवान जैसा चार भुजाओं का उसको रूप प्राप्त हो गया। और भगवान फिर क्या करते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को अपने टू व्हीलर में पीछे बैठा लेता है और चला जाता है, ऐसे गरुड़ में बैठा करके अपने पीछे उसको ले गए वैकुंठ में भगवान जैसे पिता अपने पुत्र को वो देखता है, उसका पुत्र का जो है कहीं मान लो दुर्घटना हो गई सड़क में, और जब पिता को पता चलती है तो अपने टू व्हीलर में आकर के अपने पुत्र को जो ना दुर्घटना स्थल से उठा करके और बिठा करके और ले जाता है अपने घर। ऐसे भगवान जो है ना गजेंद्र को जो है ना ले गए अपने साथ, तो भगवान के पीछे भगवान के साथ गरुड़ में बैठ करके और गजेंद्र चले गए भगवान के धाम में, कितनी आसानी से, है कि नहीं। तो इतना आसान जो है है, अगर आप मान लो भगवान को कि वो दीन वत्सल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, और आप जो है विनम्र हो जाओ, आसमान छोड़ दो, दीनता अगर स्वीकार कर लो, है ना, तो जो भक्त हैं वो अपने को बहुत दीन मान करके और भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान को विनम्रता प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, प्रणादपि सुमीचेन तरोरपि सहिष्णुना, है अपने को तिनके से भी ज्यादा नीचे मानो अगर आप अपने कष्टों को दूर करना चाहते हो। और यही समस्या निराकारवादी के अंदर, यही समस्या वो यही सोचता है, भगवान को साकार मानने में उसको दिक्कत यही होती है। जो निराकारवादी है वो भगवान को साकार मानने में उसको दिक्कत यही होती है कि अगर मैं भगवान को साकार मानूंगा तो फिर वो प्रणाम ही करता रहूंगा, नमस्कार करता रहूंगा, मैं बेवकूफ की तरह जो है उनके चरणों में अपनी नाक रगड़ता रहूंगा, तो ये ठीक नहीं लगता अभिमान के कारण। अभिमान जो है ना इतना जो है ना कष्ट देने वाला है, कष्ट का कारण अभिमान ही है, इसलिए वो निराकार में आसक्त होता है वो। अगर हम निराकार मानते हैं, कोई रूप ही नहीं है, तो फिर ना तो प्रणाम करने की जरूरत है, ना प्रार्थना करने की जरूरत है, जड़ गणाने की फिर जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम महान बन जाएंगे, हम ग्रेट, आई एम ग्रेट, है कि नहीं? तो ये समस्या है, आप महान बनना चाहेंगे। लेकिन वैकुंठ में जो है इतना जो है शुद्ध वातावरण है वैकुंठ में कि किसी के अंदर अभिमान नहीं है। भगवान भी जो है भक्तों के जो है बस में होते हैं, भगवान भी अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं भगवान, है ना? तो वे भी अपने ऐश्वर्य में आसक्त नहीं है। भगवान में इतना जो ना गुण है, इतनी विनम्रता है कि वे जो है भक्तों के साथ में पिता के जैसा और भक्तों के साथ पुत्र जैसा भी व्यवहार करते हैं, पुत्र बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, इतना भगवान का जो है ना गुण है। आप अभिमान छोड़ दो तो देखोगे भगवान में और अभिमान शून्य है। जब आप अभिमान करते हो तो भगवान में भी अभिमान हजार गुना। आप अकड़े रहते हो, नहीं प्रणाम करेंगे भगवान को, तो भगवान कहते हैं तू अकड़ता है तो मैं भी अकड़ता हूं, है ना? है ना? तो इस तरह से और दूर हो जाते हैं भगवान, और तकलीफ मिलती है कि नहीं? और जितना झुकते हैं तो भगवान और ज्यादा झुकते हैं। जो भक्त हैं भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान फिर इतना मतलब उसका सम्मान करते हैं, उसको कितना सम्मान प्राप्त होता है। दुनिया भर में जहां जाता वहीं पर लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं उसका। भगवान जो है फिर उसकी हर प्रकार से उसका सम्मान बढ़ता है। जैसे प्रभुपाद जी है ना, तो प्रभुपाद जी केवल कृष्ण के जो है ना समर्पित थे, कृष्ण के प्रति जो है ना समर्पित थे, और प्रभुपाद की कितनी पूजा हुई, प्रभुपाद को कितना लोगों ने सम्मान दिया, और कितने झुकते थे प्रभुपाद के आगे, जहां जाए वहीं पर सब झुकते हैं, सब झुकते हैं प्रभुपाद के सामने। क्योंकि प्रभुपाद ने किसी को ना तो खिलाया पिलाया, ना घूस दी, ना तो पैसे दिए किसी को कि मुझे प्रणाम करो मेरे पैर छुओ, और ना तलवार दिखाई कि मुझे प्रणाम करो तो देखो मेरे हाथ में तलवार है, ना तो ये। तो भी लोग झुकते थे प्रभुपाद के सामने, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के सामने झुकते थे, इसलिए पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित थे, तो सब उनको समर्पित होते, सब उनको समर्पित होते हैं। तो ये जो है ना रहस्य है, ये रहस्य है। अगर भगवान को मान लो कि हाँ भगवान में दया है, तो आप जो है ना बहुत लाभ उठा सकते हो। जो निराकारवादी है वो कहते हैं ना भगवान में दया है, ना भगवान का रूप है, ना भगवान में कोई गुण है, तो ठीक है, दया नहीं है तो फिर क्या है भगवान में? निर्दया, निर्दय। तो भगवान को अगर आप निर्दय मान लेते हो तो आपको ही नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? आपका ही। अगर भगवान को दयालु मानते हो तो भगवान बहुत दयालु है, तो आपको लाभ होगा। भगवान तो तैयार है सब कुछ करने के लिए। अगर आप भगवान की दया देखना चाहते हो तो इतनी दया देखोगे कि अंत ही नहीं मिलेगा भगवान की दया। इन भगवान में दया नहीं देखना चाहते हो तो दया नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल दया नहीं मिलेगी। भगवान को समझते हो कि कठोर हृदय भगवान, शून्य है, शून्य हृदय है भगवान, तो पत्थर की तरह कठोर है, बिल्कुल कोई दया नहीं है। तो ये समस्या है। जो निराकारवादी हैं वो स्वयं जो है ना भगवान को जो है निर्दयी मान लेते हैं, तो फिर तकलीफ पाते हैं। जो भक्त है वो क्या देखता है भगवान के अंदर? दया, है ना? और वो अपने को जो ना क्या कहता है, हरे मत समो पातकी नासी भूमो तथा तो समुनासी पापा पे हारी इति इति तुम जमत्वा जगन्नाथ है देव यथेच्छा भवित्ते तथा माम कुरुत्व में कि हे हरि मेरे समान इस पृथ्वी में कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान पापों को दूर करने वाला कोई नहीं है। तो दोनों की जोड़ी अच्छी मिली, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान पापों को दूर करने वाला कोई नहीं है। इति तुम तमत्वा जगन्नाथ देव, तो हे जगन्नाथ देव ऐसा मान करके अब तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करो, अब ऐसा आप समझ लो। तो भक्त समझा देता है भगवान को, क्या आप ऐसा समझ लो तो भगवान ऐसा समझ लेते हैं, है ना। जो निराकारवादी है वो क्या भगवान को समझाता है, भगवान समझ लो कि तुम्हारा कोई रूप नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई दिया नहीं है, तो भगवान समझ लेते हैं तो आप तकलीफ उठाते हो, लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं क्लेशो अधिक तरह से शाम, उनको कष्ट मिलता है। तो भक्त ये मान लेता है, तो इसलिए भगवान को बार बार समझाता रहता है, बार बार समझाता रहता है कि आप व्यासा करो, आप व्यासा करो। आज का जो आज की तारीख में जो प्रभुपाद ने जो लिखा है ना, पत्र लिखा है, उसमें क्या है प्रभुपाद
के साथ भी दुख है, सोचना के और भी बहुत आने
हैं। हाँ, भक्त जो है ना, जब ये सोचता है कि मुझे जो दुख मिला है तो ये भगवान की कृपा से कम मिला है, मुझे तो और ज्यादा मिलना चाहिए, ये विनम्रता अगर आ जाए आपके अंदर तो आप देखो कि भगवान की कृपा और आपको मिलेगी। जो भक्त भगवान की कृपा देखने की आदत डाल देता है, हमेशा हर बात में भगवान की कृपा देखने की आदत बना लेता है कि भी भगवान की कृपा है ना, तो फिर उसको भगवान की कृपा और दिखाई देती है, और दिखाई देती है, है ना। जो निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, वो मानते नहीं भगवान की कृपा, भगवान के अंदर कृपा हो ही नहीं सकती, तो ठीक है नहीं हो सकती है तो फिर भोगो तकलीफ तो दुर्योधन था वो भगवान को दुष्ट मानता था, तो भगवान ने दुष्टता दिखलाई उसको है ना। तो ये समस्या है,
भगवान पत्थर मारते हो तो तुम्हें पत्थर ही दिखाएंगे
हाँ। तो इस तरह से जो ना भक्त हैं, भगवान के क्लेश को दूर करते हैं। हाँ, ये भी बात है, भक्तों में जो एक गुण ये भी है कि भगवान का क्लेश दूर करते हैं। जैसे ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण के कष्ट को दूर करना चाहते हैं हमेशा, तो उनका कष्ट हमेशा दूर होता है। और जो असुर हैं, कृष्ण को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो उनका कष्ट बढ़ता है। जो असुर हैं वो कृष्ण को मार डालना चाहते हैं तो वो मर जाते हैं, उनका विनाश होता है। जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं तो उनकी रक्षा होती है। कृष्ण जी कोई रक्षा नहीं करता, न कृष्ण कोई विनाश करता है। इन जो कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं उनकी रक्षा होती है, और जो कृष्ण को विनाश करना चाहते हैं उनका विनाश हो जाता है। हम लोग आरती उतारते हैं भगवान की, तो ये भी आरती का मतलब क्लेश है वास्तव में। आपने कभी सोचा कि आरती जो उतारी जाती है भगवान की, इसका क्या मतलब है? आरती का मतलब है क्लेश, भगवान का जो क्लेश है वो आप उतारते हो किसमें? ज्योत में, अग्नि में आप भगवान का जो कष्ट है वो उतारते हो। इसके बाद फिर आरती लेते हो अपने सिर में, वो लेकर के अपने सिर में लगाते, क्यों? वो भगवान का जो क्लेश आ गया है उसमें अग्नि में, वो आप हाथ में लेकर के और अपने सिर में ले रहे हो, भगवान का क्लेश ले रहे हो। अब भगवान का क्लेश लेते हो तो भगवान आपका क्लेश ले लेते हो। आप भगवान का क्लेश जो है अपने सिर में लेते हो, सिर माथे में, भावना यही है कि भगवान को जो भी कष्ट हो वो इसमें आ जाए, चरणों में उतारते हैं, फिर नाभि में उतारते हैं, फिर चेहरे में उतारते हैं, फिर पूरे शरीर में उतारते हैं, जितना भी कष्ट है भगवान को तब आपने उसमें ले लिया। आरती उतारी है? वैसे हम लोग करते हैं आरती आरती की जाती है, लेकिन वैसे आरती की नहीं जाती है, आरती उतारी जाती है और फिर आरती ले जाती है। आप आरती लेते हो अपने आंखों में सिर में, तो भगवान का जो कष्ट है वो अपने सिर में और आंखों में आपने ले लिया है, और इस तरह से जो भक्त हैं उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये विनम्रता है, जो भक्त हैं वो त्रिनादपि सुनीचेन तिन के सिविधा नीच हो करके ना भगवान का जो है गुणगान करते हैं, है ना। कृपया तव पाद पंकज सहित धूलि से सम चिंता है, अपने चरण कमल के धूल के समान मुझे मान, है ना। तो ये ना अपने को छोटा मान करके कि मैं इसी लायक हूं, भगवान के सामने अपने को तिन के सी भी ज्यादा नीच मान करके, जब भक्त जो है भक्ति करता है तो उसका जो है क्लेश दूर हो जाता है, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थी ललिता विशाखा गौरता राम कृष्ण हनुमान की। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।